जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो फिर से पहले की तरह हम गौर लीला की चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, उनके चरित्र, उनके पार्षद, उनके उपदेश आदि ये सब ग्रहण करने से हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय निश्चित ही शीघ्र हो उठेगा। साथ साथ में हम ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह के वैष्णव रहा करते थे महाप्रभु के समय और किस तरह के वैष्णव हमें होने का प्रयास करना चाहिए, किस स्तर तक पहुंचना चाहिए। ओ सॉरी, वन ट्रांसलेशन, यस टू इंग्लिश। और कोई, एनीबडी एल्स हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी? हाउ मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिंदी हियर? ओनली वन। सो व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द होल थिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, वी विल हैव समवन ट्रांसलेट फॉर यू सेपरेटली, यस। Otherwise, just one person we have to. तो पिछली बार नकुल ब्रह्मचारी की चर्चा हुई थी और ऐसे अनेक जो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, उनकी चर्चा भी हुई थी। फिर शायद प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने नरसिंहानंद ब्रह्मचारी की चर्चा भी की होगी उसके बाद। तो अब हम एक ऐसी लीला की चर्चा करना चाहेंगे जिससे महाप्रभु के भक्तों का गौरव बढ़ता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु के पार्षद भी कितने महान थे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो अनेक भक्त उनको मिलने के लिए आया करते थे जगह जगह से। एक बार एक ऐसे भक्त आए जिनका नाम था प्रद्युम्न मिश्र। अब हमारे दैनिक अध्ययन में और पाठ में भी जो सुबह शाम होता है प्राय चैतन्य चरितामृत की चर्चा नहीं होती है, बहुत कम होती है। सुबह भागवत और शाम को भगवद गीता, तो चैतन्य चरितामृत रह जाता है। तो हमारे लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए इस कथा को हम करेंगे तो श्लोकों सहित, ताकि चैतन्य चरितामृत के श्लोकों का उच्चारण करने का रस भी हमें मिल जाए और अभ्यास भी हो जाए इसके बारे में। कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये वर्णन किया हुआ है। तो प्रद्युम्न मिश्र नाम के भक्त जब आए चैतन्य महाप्रभु के पास तो उन्होंने क्या निवेदन किया, फिर महाप्रभु ने क्या कहा और बाद में क्या अनुभव हुआ प्रद्युम्न मिश्र का, इसके बारे में हम अब सुन लेते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के पांचवें अध्याय से यह है। रामानंद का प्रद्युम्न मिश्र का उपदेश।
एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरणे दंडवत कोरी किछु करे निवेदने।
तो एक बार एक दिन प्रद्युम्न मिश्र नाम के एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और दंडवत करके उन्होंने उनके चरणों में एक निवेदन किया।
सुनो प्रभु मोहि दीन गृहस्थ अधम कोनो भाग्ये पाणा छोरी पाणा छोन तुमार दुर्लभ चरण।
सुनो प्रभु मोहि दीन गृहस्थ अधम। देखिए प्रभु, मैं तो एक अधम गृहस्थ हूं, कोनो भाग्य पाई छुन तुम्हार दुर्लभ चरण, बहुत दुर्भाग्य सौभाग्य है, बहुत बड़े भाग्य से आपके चरण कमलों की प्राप्ति अब हुई है।
कृष्ण कथा सुनी बारे मोर इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोरे हन सदय।
कृष्ण कथा सुनी बारे मोर इच्छा है। तो वो महाप्रभु के पास आए हैं भगवान कृष्ण के बारे में कुछ सुनने के लिए। कृष्ण कथा कहो मोरे होना सदय, तो दयावान होकर कृपया मुझे कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, परंतु इस दुनिया में एक साधु, एक सन्यासी, एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो क्या चर्चा करनी चाहिए? तो यहां प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं, मैं आपके पास आया हूं कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो यहां महाप्रभु के पास आके प्रद्युम्न मिश्र अपने भौतिक कोई समस्याओं का हल निकालने के लिए कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो केवल सीधे कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं और उनके जीवन में बस और कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रद्युम्न मिश्र भी एक शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों की पहचान यही होती है कि वो आपस में केवल श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मच्चित्तम मद्गत प्राण बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण तो बताते ही हैं कि उनके भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, कि कथयंतम, कि वो आपस में कथा मेरे बारे में करते रहते हैं, परस्परम कथयन्तः। तो आपस में कृष्ण कथा करना ये भक्तों का लक्षण है।
प्रभु कहेन कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तार मुखे सुनी।
तो चैतन्य महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं कि कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, मैं तो कृष्ण कथा नहीं जानता हूं। यदि आपको कृष्ण कथा सुनना है तो आपको रामानंद राय के पास जाना है। अब क्या कृष्ण कथा चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते हैं? अवश्य जानते हैं। फिर भी वो प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय के पास भेजना चाहते हैं, क्यों? अब देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था तो उस समय जातिवाद के जड़ें जो हैं वो बहुत सख्ती से समाज में फैली हुई थी, और जातिवाद में ये एक महत्वपूर्ण समझ थी लोगों की कि जाति से या जन्म से जो हमारी जाति होगी या वर्ण होगा वही सही होगा, और केवल जाति से जो ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ हैं अन्यों की तुलना में, और उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये जाति गोसाएं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं वही मात्र गुरु हो सकते हैं इत्यादि, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया कि ये गलत है। कृष्ण भक्ति में ऐसा कोई बंधन नहीं है। महाप्रभु की शिक्षा तो ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण तत्व को जानता है तो सारे दुनिया को तार सकता है। कोई श्लोक जानते हैं आप चैतन्य चरितामृत से? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शय गुरु होय। तो चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, यदि वो कृष्ण तत्व को भली भांति जानता है तो वो गुरु बनने के लिए योग्य है। यहां वर्ण और आश्रमों का कोई विचार नहीं है। वास्तव में यदि वो कृष्ण को जानता हो तब। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु न केवल अपने वचनों से, अपने शब्दों से इस बात का प्रचार किया, परंतु अब उनके भक्त समाज में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण उनके पार्षद और भक्त थे जिनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, और वो तथाकथित नीच जाति के थे। कोई उदाहरण आप दे सकते हैं महाप्रभु के पार्षदों में से कौन ऐसे ब्राह्मण कुल को छोड़कर अन्य कुलों में जन्म लिए थे? बताइए। रामानंद राय कौन से जाति से थे? रामानंद राय कायस्थ थे, मतलब शूद्र तुल्य ऐसे माने जाते हैं। और हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी एक जमींदार परिवार के थे, ब्राह्मण तो थे नहीं, मतलब जन्म से। नरोत्तम दास ठाकुर, तो ऐसे कई उदाहरण है। और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने चाहा कि इनके द्वारा जिनको कि समाज नीच जाति का मानता है, इनके द्वारा ही मैं मेरे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कराऊंगा और सारे समाज को साबित कराऊंगा कि जाति भेद नहीं है कृष्ण भावनामृत में, और जाति महत्व की बात नहीं होती है। हाँ, जाति का अपना कोई स्थान होता है इस दृष्टि से कि यदि कोई किसी सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेता है तो उसे एक सुअवसर प्राप्त होता है कि ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लेके उसे संस्कार अच्छे मिलते हैं, तो बचपन से ही एक अवसर मिलता है कि वह कृष्ण भक्ति करे। परंतु यह भी संभव है कि ऐसा व्यक्ति इस अवसर का फायदा न उठाए, गलत रास्ते पर चले जाए। तो खैर, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, रामानंद राय, ऐसे उनके पार्षदों को चुना और इनके द्वारा उनके उपदेशों का प्रचार सब जगह कराया। रूप और सनातन गोस्वामी वैसे तो एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, परंतु नवाब हुसैन शाह की सेवा को स्वीकार करके और मुसलमानों का बहुत निकट से संग करने के कारण वो भी समाज की दृष्टि से यवन प्राय हो चुके थे। इसलिए उनके नाम भी ऐसे मुसलमान नाम थे, दबीर खास और साकर मल्लिक। तो ऐसे भक्तों को विशेष करके महाप्रभु ने चुना है ताकि लोग स्पष्ट रूप से जान लें कि कृष्ण भक्ति में ऐसे कोई विचार नहीं होता है। और साथ साथ उन्होंने ऐसे लोगों को इन भक्तों के द्वारा कथा सुनाया जो कि स्वयं ब्राह्मण कुल के थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती इत्यादि, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के थे। नरोत्तम दास ठाकुर उधर ब्राह्मण कुल के नहीं थे, फिर भी नरोत्तम दास जो है वो उनके गुरु बने। और उसमें जो ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत क्रोधित हो गए थे, उस जमाने के ब्राह्मण लोग, षड्यंत्र आदि रचाने का प्रयास किया उन्होंने। तो खैर, प्रद्युम्न मिश्र ये एक उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार के सज्जन थे और रामानंद राय एक कायस्थ थे, शूद्र। तो महाप्रभु ने ठीक समझा कि चलो अच्छा प्रचार होगा, अच्छा संदेश मैं सारे दुनिया को दूंगा, यदि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला आदमी एक कायस्थ व्यक्ति से कृष्ण कथा सुने और ज्ञान प्राप्त करे। वैसे रामानंद राय का कायस्थ परिवार से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वैष्णव को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये नरक बुद्धि मानी जाती है और ये बड़ा वैष्णव अपराध होता है ऐसे समझना कि ये वैष्णव इस जाति का है या वो वैष्णव इस जाति का है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि समाज की दृष्टि ऐसी है, तो समाज को समझाने के लिए और हम सबको समझाने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता कृष्ण कथा, लेकिन रामानंद राय है, आप उनके पास जाइए, उनसे आप अवश्य कृष्ण कथा सुन सकते हैं। भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनिते हय मन, रामानंद पाशे जाई करह श्रवण। तो महाप्रभु उनसे कहते हैं, भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनते हय मन, तुम्हारा वास्तव में भाग्य है कि कृष्ण कथा सुनने की इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है। बहुत बिरला ही ऐसे दिखने में आता है। कृष्ण कथा सुनने की रुचि यदि किसी के हृदय में है तो हम समझ सकते हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है। तो प्रद्युम्न मिश्र के हृदय में ऐसे इच्छा जागृत हुई, वह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से सुनना चाहते थे। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि जाओ, रामानंद राय के पास जाओ। कृष्ण कथाए रुचि तुम्हार बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथाए रुचि सही भाग्यवान। कृष्ण कथाए रुचि तुम्हार बड़ो भाग्यवान, आपके मन में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। जार कृष्ण कथा रुचि सही भाग्यवान, जिसके मन में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। और इसके विपरीत जिनके हृदय में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई हो तो वो क्या है? दुर्भाग्यशाली है। फिर महाप्रभु भागवत का श्लोक बताते हैं, धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। हमारे दैनिक कर्तव्यों को करने के बाद भी यदि हमारे मन में न उत्पादयेत् उत्पन्न नहीं होता है, भगवान श्री वासुदेव के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति आकर्षण, तो ये जितने भी हमारे कार्य हैं वो सब निष्फल हैं। श्रम एवल ही केवलम, केवल श्रम मात्र है। तो फिर प्रद्युम्न मिश्र को ऐसे आदेश जब मिला तो वो रामानंद राय के घर में गए और रामानंद राय के सेवक ने उनको बिठाया एक स्थान में कि आप बैठे, रामानंद राय अंदर व्यस्त हैं। तो जब तत्क्षण वो रामानंद राय का दर्शन नहीं कर पाए, उनको बैठने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उस सेवक से पूछा कि रामानंद राय क्या कर रहे हैं। जैसे हम किसी के यहां जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं और उनका कोई सेवक है, मैं बोले बैठिए, तो हम पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, कहीं वो बाहर गए हैं, अपने कोई स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सेवक को ये पूछा तो फिर सेवक का उत्तर था बड़ा आश्चर्यजनक, और सेवक ने जवाब दिया कि दो ऐसे देव कन्याएं हैं, उनकी उम्र ज्यादा नहीं है और उनके साथ में रामानंद राय हैं। ये दोनों कन्याएं जो हैं ये बहुत ही दिखने में सुंदर हैं, दुई देव कन्या है परम सुंदरी, तो परम सुंदरी हैं ये, नृत्य गीते सुनिपुण वयस किशोरी, किशोर वय है उनका, उनकी आयु है, और नृत्य करने में, गीत गाने में बड़े निपुण हैं ये। तो रामानंद राय उनके पास क्या कर रहे हैं या क्या कर कहां ले गए हैं? उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनको नृत्य करना सिखा रहे हैं, गीत गाना सिखा रहे हैं, और इन गीतों की रचना उन्होंने अपने जगन्नाथ वल्लभ नाटक में किया हुआ है। तो रामानंद राय ने ऐसी नाटक की रचना तो की थी, तो उस समय गोपियों के वेश में उनको कोई पात्रों की आवश्यकता थी, तो इन दो लड़कियों को, किशोरियों को उन्होंने चुना और उनको प्रशिक्षित कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि कैसे यहां गीत गाना चाहिए, कैसे नृत्य करना चाहिए, उनको पास में बिठाकर एकांत स्थान में ये सिखा रहे हैं। ऐसा वो सेवक कहते हैं प्रद्युम्न मिश्र से। तो वो कहते हैं सेवक कि कृपया यहां पर आप बैठिए थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही वो यहां आएंगे तो आपके पास में आएंगे, आपके साथ बैठेंगे। तो रामानंद राय जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन दो किशोरियों को साथ में ले गए और फिर अपने हाथों से तेल का लेप या तेल का मालिश उनके ऊपर कराया, फिर उनको नहलाया और अपने हाथों से उनकी सेवा करना शुरू किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, सहस्ते पुराण वस्त्र सर्वांग मंदन तबु निर्विकार राय रामानंदिर मन। तो इतना सब करते हुए उनको सजा रहे थे आदि, फिर भी उनका मन निर्विकार था, विकृत नहीं हुआ रामानंद राय का मन। इतना सब करने के बाद भी यद्यपि ये दो छोटी जो किशोरियां थीं, दिखने में बहुत सुंदर थीं इत्यादि, फिर भी रामानंद राय के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। और कैसे था उनका मन, रामानंद राय का मन?
काष्ठ पाषाण स्पर्शे हय जय छे भाव, तरुणी स्पर्शे रामानंदेर तय छे स्वभाव।
काष्ठ पाषाण स्पर्शे हय जय छे भाव, उन्होंने तो स्पर्श किया था किशोरियों का, लेकिन उनके मन में प्रभाव ऐसे पड़ा कि मानो उन्होंने किसी काष्ठ को या लकड़ी को या पत्थर का स्पर्श किया हो। हम लकड़ी का स्पर्श करते हैं तो कुछ मन में विकार नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि ये बहुत साधारण चीज है, दो रोज हम करते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे मन के ऊपर। तो रामानंद राय का मन इस प्रकार से था, यद्यपि वह ऐसे किशोरियों के साथ में थे, तनिक भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो रामानंद राय ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि वो विचार कर रहे थे अपने स्वरूप के, अपने स्वरूप के अनुसार वो जानते थे कि वो ब्रज के गोपी हैं, और ऐसे बाहरी दृष्टि से प्रतीत हो रहा था कि ये व्यक्ति पागल हैं, फिर भी अपने आंतरिक अवस्था में वो अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए, अपने आप को एक गोपी समझते हुए इन दो किशोरियों को भी गोपी समझ रहे थे, और इस तरह से वो इन दो गोपियों की सेवा कर रहे हैं ऐसे समझ से वो ये सब कर रहे थे। तो कविराज गोस्वामी फिर कहते हैं,
महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा, ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा।
महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा, तो महाप्रभु के भक्तों की महिमा दुर्गम है, समझना बड़ा मुश्किल है। ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा, और जितने भी भक्त हैं महाप्रभु के सब एक से बढ़कर एक हैं, उनमें से राय रामानंद का स्थान और भी विशेष है, क्योंकि उन्होंने दिखलाया कि कृष्ण प्रेम या भक्ति प्रेम की सीमा कैसे बढ़ाई जा सके। तो रामानंद राय ऐसे निर्देशन करते रहे, उन दो कन्याओं को सिखाते रहे कैसे नृत्य में कौन सी मुद्राएं होनी चाहिए, चेहरे के ऊपर कैसे मुद्रा होनी चाहिए, हाथों की मुद्राएं कैसे होनी चाहिए, सब सिखलाने लगे। और उसके बाद फिर उनको प्रसाद आदि खिलाकर उनको भेज दिया। तो इस तरह से प्रतिदिन ऐसे ये दो देवदासियों को वो सिखलाते थे, प्रशिक्षित करते थे। तो रामानंद राय कहते हैं, कौन जाने क्षुद्र जीव कहां तारा मन, एक साधारण जीव जो है बद्ध जीव, वो कैसे रामानंद राय जैसे व्यक्ति को मन समझ सकता है, संभव नहीं है। तो जब उस दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया था, रामानंद राय आए, तो सेवक ने जाके रामानंद राय को बताया कि ऐसे प्रद्युम्न मिश्र नाम के व्यक्ति आपको मिलने आए हैं। तो तुरंत रामानंद राय वहां पर गए, प्रद्युम्न मिश्र को सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और बड़े विनम्र भाव से कहने लगे कि आप तो काफी समय पहले आए, परंतु किसी ने मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं आपके चरणों में, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आपके यहां आपके आगमन से मेरा सारा घर जो है अब शुद्ध हो गया है, तो कृपया मुझे आदेश दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपका सेवक हूं, किस तरह से आपकी सेवा मैं कर सकता हूं, बताइए। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो उन्होंने कहा, मैं केवल आपका दर्शन करने आया हूं, आपका दर्शन करने से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, अब मैं वापस जा रहा हूं। तो इसलिए फिर वहां से निकले और चैतन्य महाप्रभु के पास गए। अगले दिन जब महाप्रभु के पास आए तो फिर वहां क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ?
हर दिन मिश्र आइला प्रभु विद्या मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनील राय स्थाने।
तो अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में पहुंचे प्रद्युम्न मिश्र, तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, कृष्ण कथा सुनीला राय स्थाने, क्या रामानंद राय के स्थान में जाके उनसे कृष्ण कथा सुनाया नहीं आपने? तो प्रद्युम्न मिश्र ने उस समय वर्णन किया कि रामानंद राय क्या कर रहे थे और इसलिए मैं उनके मुख से कृष्ण कथा नहीं सुन पाया, केवल वहां बैठ के मैं चले आया। फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे,
आमी तो सन्यासी आप नरे विरक्त कोरी मानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम यदि सुनी।
आमी तो सन्यासी अपनार विरक्त कोरी मानी, मैं तो सन्यासी हूं और अपने आप को बड़ा विरक्त मानता हूं मैं। दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम यदि सुनी, तब ही विकार पाए मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर होय कौन जन। मैं एक सन्यासी हूं, अपने आप को विरक्त मानता हूं, फिर भी स्त्री एक शब्द, ये स्त्री शब्द सुनने से भी मेरा मन विकृत हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी तो स्त्री के दृश्य से भला कौन ऐसे व्यक्ति है जो विकृत नहीं होगा? बहुत मुश्किल है। अभी धीरे धीरे महाप्रभु क्या करना चाह रहे हैं? रामानंद राय का गुणगान करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं अभी इस समय। हालांकि महाप्रभु जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, अपने बारे में जो कह रहे हैं महाप्रभु सत्य नहीं है। महाप्रभु जैसे वैरागी कौन हो सकता है? महाप्रभु का चरित्र बड़ा अद्भुत है। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना षड्भुज रूप दिखाया था। षड्भुज रूप में तीन रूप सम्मिलित हैं। कौन से तीन रूप हैं? श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामचंद्र। तो षड्भुज, इन छह भुजाओं में दो भुजाओं में उन्होंने श्री रामचंद्र के धनुष बाण धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण के रूप में उनके दो भुजाओं में उन्होंने बांसुरी धारण करके वो बांसुरी बजा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक सन्यासी हैं, तो एक हाथ में सन्यास दंड और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किया हुआ था उन्होंने। तो ये सम्मिलित ये एक तीनों भाव जो है महाप्रभु में हैं। कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने अपने सन्यास आश्रम में रहते हुए श्री रामचंद्र की तरह सख्त मर्यादा का पालन किया। श्री रामचंद्र जब इधर उधर भ्रमण किया करते थे वनवास के समय, अनेक जगह उनको ऐसे प्रस्ताव मिले विवाह के लिए या सेवा, ऐसे जैसे सीता देवी सेवा करती हैं वैसे भी हम सेवा करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने नहीं मानी बात। जैसे जब श्री रामचंद्र मिथिला गए, वहां स्वयंवर हुआ, सीता देवी का हाथ हित लिया, तो मिथिला की जितने भी नारी थीं वो सब श्री रामचंद्र के पास आई कि हमें स्वीकार कीजिए, जैसे आपने सीता को स्वीकार किया है हमें भी स्वीकार कीजिए। परंतु श्री राम ने कहा, नहीं, मैं नहीं ऐसे कर सकता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आगे चलते चलते परशुराम को पराजित करने के बाद कौशल प्रांत में आए, तो वहां भी कौशल प्रांत के नारियों ने आके वही इच्छा व्यक्त की, फिर से श्री रामचंद्र ने मना कर दिया। अयोध्या में आए श्री राम सीता देवी को लेकर, वहां अयोध्या की नारियों ने भी ऐसे सरयू नदी के तट में जाके तपस्या की ताकि उन्हें भी ऐसी सेवा करने का मौका मिले श्री राम को कि जैसे सीता देवी कर रही थी। तो इन सबको श्री राम ने वरदान दिया कि इस अवतार में, इस जन्म में तो मैं आपकी इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मर्यादा स्वीकार की है, एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है मैंने। तो अगले युग में, द्वापर युग के अंत में जब मैं आऊंगा उस समय आप गोपियां बनोगे व्रज में। तो तीनों को उन्होंने गोपियां बनने का जो वरदान है वो दिया। फिर आगे वो चले, जब वनवास में भेजे गए दशरथ महाराज के आदेशानुसार, दंडकारण्य ने भी मैं भी वहां कई ऋषि मुनि थे जो गोपाल की उपासना करते थे, गोपाल के भक्त थे वो कृष्ण के। और अचानक उन्होंने देखा कि वही कृष्ण आज धनुष बाण धारण किए उनके आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और वही भगवान जिनके ऊपर वो ध्यान कर रहे थे अपने अंतःकरण में, अब जटामंडित रूप से प्रकट हो गए उनके हृदय में और ये जान गए कि ये वही गोपाल हैं, कोई अंतर नहीं है। तो जब श्री राम उनके आश्रम में आए तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपसे कुछ वरदान चाहते हैं, आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। तो उन्होंने कहा क्या इच्छा है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। कैसी सेवा करना चाहते हैं? जिस तरह से सीता देवी आपकी सेवा करती हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो श्री राम ने कहा यदि आपने ऐसे ही विचार लक्ष्मण जी के प्रति किया होता तो तुरंत मैंने पूरा कर दिया होता, परंतु मैं मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है। इसलिए आप भी द्वापर के अंत में गोपियां बन के मेरा संग प्राप्त करोगे। फिर ऐसे आगे चल के गए, पंचवटी में भी पुलिंद स्त्रियां थीं, उनके साथ भी ऐसे हुआ। तो बार बार ऐसे देखा जाता है कि श्री राम ने बड़े सख्ती से अपने मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। हालांकि श्री रामचंद्र के पास अवसर अनेक आए और राजा होने के कारण उनके लिए ये वर्जित नहीं था, क्षत्रिय समाज में ऐसे एक स्वीकृत बात थी, एक राजा अनेक रानियों को स्वीकार कर सकता है, परंतु उन्होंने नहीं की क्योंकि अपने नियमों में, अपने वचन में वो बहुत सख्त थे। तो ठीक उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास आश्रम को स्वीकार किया तो इतने सख्त थे अपने नियम के पालन में कि वो श्री राम के समान थे। और छोटा हरिदास को कैसे उन्होंने दंड दिया वो तो आप सबको पता ही है। ऐसे भी बताया जाता था कि स्त्रियां उनके पास में भी नहीं आती थीं, दूर से ही उनको प्रणाम करना पड़ता। तो बहुत सख्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो श्री रामचंद्र के समान थे मर्यादा के पालन करने में, नियम पालन करने में। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे भक्तों को भेज रहे हैं रामानंद राय जैसे व्यक्तियों के पास, जो कि तो देवदासियों को या छोटी किशोरियों को सजा रहे हैं, नृत्य सिखला रहे हैं और कह रहे हैं अपने भक्तों को उनसे जाके कृष्ण कथा सुनिए। तो अब ये श्री चैतन्य महाप्रभु का व्रज का भाव है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो तो स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण है जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। राधा भाव सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो इसलिए अब इस भाव को वो स्वीकार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग समझ जाएं कि वृंदावन का भाव क्या होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने रामानंद राय के पास इनको भेज दिया और कहा कि जाके वहां सुनो। जब प्रद्युम्न मिश्र लौट कर आए थे तो शायद उनके मन में एक संशय हुआ होगा कि महाप्रभु ने मुझे ऐसे यहां क्यों भेजा। ये पहली बात तो गृहस्थ है। दूसरी बात देखो, ऐसे वो तो किशोरियों के साथ में लंबे समय तक है, उनको सिखा रहे हैं, नृत्य सिखा रहे हैं, गीत सिखा रहे हैं, और महाप्रभु हमें भेज रहे हैं उनके पास कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो कुछ विचित्र सा लगा होगा शायद प्रद्युम्न मिश्र को। इसलिए आगे महाप्रभु कहते हैं, अब रामानंद राय का गुणगान करेंगे वो, ताकि प्रद्युम्न मिश्र समझ जाएं कि महाप्रभु ने कोई गलती नहीं की है। भगवान का स्वभाव ऐसे होता है कि वो अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, जैसे भक्तों का स्वभाव होता है कि वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो इसलिए महाप्रभु अब बतलाना चाहते हैं कि मैं एक सन्यासी होने के बाद भी इस स्थान में नहीं हूं जो कि रामानंद राय हैं गृहस्थ आश्रम में होते हुए। दूसरे शब्दों में विरक्ति वैराग्य आदि का महत्व अवश्य है आध्यात्मिक जीवन में और भक्ति में भी है, फिर भी कृष्ण भक्ति जो है ये अंतिम उद्देश्य है हमारे विरक्ति आदि का। केवल विरक्ति के जीवन स्वीकार करने से यदि हम भक्त नहीं होते अच्छी तरह से, शुद्ध भक्त नहीं हो जाते, तो हमारा वैराग्य किस काम का। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम। यदि कोई व्यक्ति अंदर और बाहर श्री हरि का दर्शन करता है तो उसको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, और यदि वो अंदर और बाहर हरि का दर्शन नहीं करता है फिर भी उसे तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तपस्या से कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो इसलिए वैराग्य तपस्या आदि इन सब का स्थान अवश्य है, परंतु मुख्य बात हमारे पथ में है कृष्ण प्रेम को कैसे जागृत किया जाए। और ऐसे रामानंद राय जैसे वैष्णव को देखने से कभी कभी मन भ्रमित भी हो सकता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, इसलिए साधारण व्यक्ति जो है रामानंद राय जैसे वैष्णवों की क्रियाओं को समझ नहीं सकते हैं। रामानंद राय कथा सुन सर्व जन, कोही बार कथा न है जाह आश्चर्य कथन। तो अब शिष्य गौरव कर रहे हैं, अपने ही भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। रामानंद राय कथा सुनो सर्वजन, सर्वजन सुनिए रामानंद कथा का के गुण कैसे हैं। कही बार कथा न है जाह आश्चर्य कथन। वैसे तो उनके ये सब बातें कहनी नहीं चाहिए, परंतु हैं बड़े आश्चर्यजनक। ये दो जो देवदासियां हैं, तरुणियां हैं, सुंदरी हैं, और स्वयं अपने करकमलों से अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं रामानंद राय उनका, और उनका श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, सब कुछ, फिर भी तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन, नाना भावोद्गार तारे करे शिक्षण। तो यद्यपि वो ऐसे इन किशोरियों को ये सब करना सिखा रहे हैं, फिर भी उनके मन में तनिक भी कोई विकार नहीं होता है। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, आश्चर्य तरुणी स्पर्श निर्विकार मन। तो काष्ठ या पाषाण की तरह उनका मन स्थिर है ऐसे तरुणियों का स्पर्श करने के बाद भी। एको रामानंद हाय ऐ अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देह तहार। केवल रामानंद राय ही हैं जिनका अधिकार है कि वो ऐसे कार्य करें। अब महाप्रभु रामानंद राय का उदाहरण देने के बाद अब हम सबको चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी है? कि हाँ, रामानंद राय कर सकते हैं, परंतु और कोई नहीं कर सकता। महाप्रभु कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता, स्वयं के बारे में महाप्रभु कह रहे हैं मैं भी नहीं कर सकता, तो अन्यों की बात तो दूर है। तो ताते जानी अप्राकृत देह तहार, इससे मैं समझ सकता हूं कि उनका देह जो है वो आध्यात्मिक है, चिन्मय है, अप्राकृत है, साधारण जड़ पदार्थों का बना हुआ देह नहीं है उनका। तो उनके मन की स्थिति को समझना मेरे लिए संभव नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की रासलीला आदि का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सुंदर व्रज लीलाओं का श्रवण करता है तो उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और ऐसे शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होता है जिसके कारण वो देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे हो जाता है। तो ऐसे कई श्लोक बीच में हम छोड़ रहे हैं क्योंकि कथा फिर बहुत लंबी हो जाएगी। फिर महाप्रभु कहते हैं रागानुगमार्जे जाने राय रभजन सिद्ध देह तुल्य ताते प्राकृत न है मन। तो रामानंद राय जो हैं वो रागानुग मार्ग में स्थित हैं, और अतः उनके आध्यात्मिक शरीर में वो स्थित हैं, इसलिए उनका मन जो है भौतिक दृश्य कभी प्रभावित नहीं होता है। आमी हो राय स्थाने सुनी कृष्ण कथा सुनीते इच्छा होए यदि पुनः जाहो तथा। मैं भी रामानंद राय के मुख से कृष्ण कथा सुनता हूं, तो यदि आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हो तो पुनः उनके पास आप जाना। मोर नाम लई हो ते हो पठाइला मोरे तुमार स्थाने कृष्ण कथा सुनिबार तरे। और जब उनके पास जाओगे आप तो उनसे कहना कि महाप्रभु ने मुझे भेजा है आपके पास, ताकि रामानंद राय जाने कि हां मुझे ऐसे करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं कि ये मेरी इच्छा है हे रामानंद कि आप इनको कृष्ण कथा सुनाएं। तो ऐसे कहने से कि महाप्रभु ने मुझे भेजा है, रामानंद राय को संकेत मिल जाएगा कि महाप्रभु की इच्छा है और ऐसे उनको करना चाहिए, ताकि दूसरे अन्य कामों को छोड़कर वो इस एक कार्य को वो कर सकें। तो फिर प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास गए, दंडवत प्रणाम किया और रामानंद राय ने पुनः प्रश्न किया कि आदेश दीजिए हम क्या सेवा आपकी कर सकते हैं। मिश्र कहे महाप्रभु पठाइला मोरे तुमर स्थाने कृष्ण कथा सुनिबार तरे। तो मिश्र ने कहा कि महाप्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है, क्यों कृष्ण कथा सुनिबार तरे, आपसे कृष्ण कथा सुनने हेतु महाप्रभु ने मुझे यहां भेजा है। तो रामानंद राय ने जब इस बात को सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और बड़े भाव विभोर होकर बड़े आनंद से वो कहने लगे प्रभुर आज्ञाए कृष्ण कथा सुनिते आयलो एथा इहा वही महाभाग्य आमे पाव कथा। श्री कृष्ण के श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार आप मेरे पास कृष्ण कथा सुनने के लिए आए हैं, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है, ऐसे अवसर मुझे भला कब मिलता, कैसे मिलता। तो ऐसा कह के रामानंद राय ने वो प्रद्युम्न मिश्र को एक एकांत स्थान में लेकर गए और वहां जाके उनसे कहने लगे, किस तरह की कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, की कथा सुनते चाहो, तो बताओ मुझे कैसी कथा सुनना चाहते हो कृष्ण के बारे में। तो प्रद्युम्न मिश्र क्या कहने लगे, तेहो कहे जे कहिला विद्यानगरे सेई कथा क्रमे तुम्हें कहिबा अमारे। जो कथा आपने महाप्रभु के संग विद्यानगर में किया था उसी को दोहराइए। तो आपको ज्ञात होगा ही, याद होगा कि जब दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा में गए थे महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात, गोदावरी के तट में जब विद्यानगर नाम के स्थान में आए थे तो रामानंद राय के साथ संवाद हुआ था, तो बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। तो गौड़ीय वैष्णवों में इसे राय रामानंद संवाद कहते हैं, बंगला में कहते संवाद। तो ये बड़ा प्रसिद्ध संवाद है क्योंकि इसमें गूढ़ से गूढ़ जो तत्व हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति के, वो सब इसमें पाए जाते हैं, सारे सिद्धांत हैं इसमें। तो अब यही संवाद जो है प्रद्युम्न मिश्र सुनना चाहते हैं। आने रखी कथा तुम्हें प्रभु उपदेष्टा आमित भिक्षुक विप्र तुम्हें मोर पोष्टा। आप तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशक हैं और मैं तो एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं और आप मेरे पोषक हैं, पोष्टा हैं, अर्थात मेरा पोषण करने वाले हैं। भालो मंद किछु आमी पूछी ते न जानी दीन देखी कृपा कोरी कोहिबा आपनी। क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं। तो ऐसी कृपा आप करें कि जो मेरे हित के लिए है वो आप मुझे सुनाएं। फिर रामानंद राय ने कृष्ण कथा करना शुरू कर दिया, स्वयं प्रश्न करते और उन्हीं प्रश्नों का वो उत्तर भी देते। आपने प्रश्न कोरी पाछे कोरे न सिद्धांत तृतीय प्रहर हैलो न है कथा अंत। प्रश्न करते और स्वयं उन प्रश्नों का सिद्धांत पूर्ण उत्तर देते। और ऐसे दोपहर का समय हो गया, सुबह का समय बीत गया, कई घंटे बीत गए और फिर भी इन विषयों का अंत नहीं हुआ था। वक्ता श्रोता कोहे सुने दूहे प्रेमा वेशे आत्मस्मृति नहीं कहां जानी बेदिन शेषे। तो वक्ता और श्रोता को कैसे होना चाहिए यह हम बता रहे हैं कविराज गोस्वामी। वक्ता श्रोता कोहे सुने दूहे प्रेमावेशे, दोनों ही प्रेमावेश में थे, बोलने वाले तो थे ही सुनने वाले भी प्रेमावेश में थे। आत्मस्मृति नहीं मतलब अपनी अपना कोई भौतिक देह है, अपना देह शरीर है, ये भी भूल गए क्योंकि जब हम बैठते हैं तो शरीर की याद बहुत आती है ना, शरीर के अलग अलग अवयव जो हैं वो याद दिलाते हैं अपने आप हमें, कहीं पीठ दर्द करता है तो कभी घुटने दर्द करते हैं, तो कभी भूख लगती है तो पेट में कुछ 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 होने लगता है, तो कभी नींद आती है, तो कुछ तो शरीर जो ऐसा है, शारीरिक भावना जो है इसका आरोप हमारे चित्त के ऊपर जबरदस्ती आ जाता है कृष्ण कथा सुनते समय भी। परंतु यहां कविराज गोस्वामी बताते हैं आत्मस्मृति नहीं कहां जानिब दिन शेषे। तो उनको भला कैसे पता चल सकता था कि अब सारा दिन भी समाप्त होने को आया है। तब दूसरे शब्दों में न उन्होंने कोई प्रसाद लिया, न जल लिया होगा, न बीच में सोए होंगे, सुबह से जो कथा शुरू हुई दिन भर चलती गई, रामानंद राय बोलते गए और प्रश्न करते गए, अपने ही प्रश्नों के उत्तर देते गए। यह है कृष्ण कथा। वास्तविक वक्ता और वास्तविक श्रोता। और फिर सेवक आए रामानंद राय को कहने के लिए, दिन का अंत तो हो गया। सेवक कहना चाहते थे कि प्रभु अब समाप्त कीजिए, क्योंकि आपको प्रसाद लेना है, बहुत और कार्य भी हैं। तो सेवक ने आके याद दिलाया कि दिन का अंत तो हो चुका। फिर रामानंद राय ने बड़े सम्मान से विदा कराया प्रद्युम्न मिश्र को, और प्रद्युम्न मिश्र ने भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा, बहुत संतुष्ट समझा, और फिर वह नृत्य करने लगे। इतने खुश हुए दिन भर कृष्ण कथा सुन के कि जब जाने का समय आया था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वाह अब जाके प्रसाद लेंगे, चलो कथा हो गई, कथा थी अच्छी, लेकिन चलो अब प्रसाद, चलो ही जाते हैं कुछ प्रसाद ले लेते हैं, ऐसे विचार नहीं। इतने हर्षित हो गए कि वो नृत्य करने लगे, और इस संवाद के बाद सीधे प्रसाद लेने नहीं गए, सीधे महाप्रभु के पास गए। नहीं, हाँ वो गए घर में गए, स्नान आदि किया, प्रसाद भी लिया। घोरे गया मिश्र कोइलो स्नान भोजन, संध्या काले देखी थे आयलो प्रभु र चरण। फिर स्नान करके महाप्रभु के पास आए। प्रभु र चरण वंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा होइलो श्रवणे। तो बड़े खुशी से महाप्रभु के चरणों की पूजा की। फिर महाप्रभु ने पूछा, तो क्या कृष्ण कथा का श्रवण किया या नहीं? मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ को रीला, कृष्ण कथा मृतार नवे मोर डुबाइला। हे प्रभु, आपने मुझे तो कृतार्थ कर दिया पूरी तरह से। कैसे? कृष्ण कथा के अमृत के अर्णव में मुझे आपने डुबा दिया। अर्णव अर्थात समुद्र में, सागर में आपने मुझे डुबो दिया। रामानंद राय कथा कोही लेना होय, मनुष्य न हे राय कृष्ण भक्ति रसमय। रामानंद राय ने किस प्रकार से कथा की, मैं उसका ठीक से वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। वो तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कृष्ण भक्ति रसमय है वो। रस से, कृष्ण भक्ति के रस से भरे हुए हैं वो, साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है। और एक कथा राय कोहिला अमारे, कृष्ण कथा वक्ता कोरी ना जानी हो मोरे। और एक चीज है जो रामानंद राय ने मुझसे कही थी, और वो क्या थी? कृष्ण कथा वक्ता कोरी ना जानी हो मोरे, कि ये नहीं सोचना कि मैं कृष्ण कथा करने वाला वक्ता हूं। क्यों ऐसे रामानंद राय ने कहा? मोर मुखे कथा कहेन अपने गौर चंद्र, जैसे कहाय तैसे कोही जेन वीन जंत्र। जो भी मैं कहता हूं वो वास्तव में महाप्रभु कह रहे हैं। मैं एक वीणा के समान हूं, जो वाद्य होता है ना संगीत के लिए, संगीत का वाद्य वीणा। मैं एक वीणा के समान हूं, जैसे महाप्रभु बजाते हैं वैसे मैं बजता हूं। अर्थात जो मेरे द्वारा वो कहलाना चाहते हैं मैं कह देता हूं। मोर मुखे कहाय कथा करे प्रचार, पृथ्वी ते के जानिबे ए लीला ताहर। इस तरह से भगवान जो हैं प्रभु, वो मेरे मुख से, मुख के द्वारा सारे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। प्रचारक महाप्रभु हैं, केवल मेरे मुख का प्रयोग कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। पृथ्वी ते के जानिबे ए लीला तहार, तो भगवान की इस लीला को इस दुनिया में कौन समझ सकता है भला। जय सब सुनिलुन कृष्ण रस रसागर, ब्रह्मादि देवेर ऐ सब ना होय गोचर। तो मैंने जो सुना है रामानंद राय से वो तो कृष्ण रस का एक सागर है। जितने भी देवता है, यहां तक ब्रह्मा जी भी है, वो भी इन विषयों को समझ नहीं सकते हैं।
अनुरस पान मोरे कोराई कोराइला तुमी जन्म जन्मे तोमार पाए विकाइलान मुमि आमी।
तो आपने मुझे इस अमृत का पान कराया है, इस अमृत रस का पान कराया है, इसलिए मैंने अपने आप को बेच डाला है आपके चरणों में, जन्म जन्मांतर आगे अनेक जन्मों तक मैंने आपके चरणों में अपने आप को बेच डाला है।
प्रभु को है रामानंद विनय रखनी आप नार कथा परो मुंडे दन आनी।
रामानंद राय महाप्रभु कहते हैं वो विनय ये नम्रता के खान है, भंडार है, इसलिए वो मुझे श्रेय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे वाक्य हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो इतने नम्र हैं वो मेरा नाम ले रहे हैं इसमें, परंतु श्रेय मेरा नहीं है, रामानंद राय का ही है।
महानुभावे रे सहज स्वभाव है आपनार गुण नहीं आपने कहे।
महानुभावेर ए सहज स्वभाव होए, जो बहुत महान भक्त होते हैं ये उनका गुण होता है कि वो अपने जो अच्छे गुण होते हैं उनका वर्णन कभी नहीं करते हैं।
रामानंद राय रे कहिल गुण लेश प्रद्युम्न मिश्रेर जय छे कोयला उपदेश।
तो अब कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने रामानंद राय के गुणों का लेश मात्र वर्णन किया है। जिस और ये प्रकाशित कब हुआ, जबकि रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र को उपदेश दिया। तो रामानंद राय तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो एक गृहस्थ थे, फिर भी ये जो छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो उनके अधीन नहीं थे। वैसे दिखने में तो एक विषयी जैसे दिखते थे, परंतु वो इतने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए थे कि वैराग्यों को भी वो उपदेश देने में सक्षम थे। तो महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय के पास इसलिए भेजा ताकि रामानंद राय के दिव्य गुणों का प्रकाश फैले सब जगह। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से जानते हैं कि भक्तों के गुणों का प्रचार कैसे किया जाए।
भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भालो जाने नाना भांगीते गुण प्रकाशी निज लाभ माने।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके भक्तों के जो दिव्य गुण हैं उनको प्रकाशित कैसे करना चाहिए, और तरह तरह से विविध प्रकार से वो करते हैं। जैसे एक चित्रकार जो होता है वो अलग अलग तरह से कोई चित्र बनाता है, तो महाप्रभु भी अपने भक्तों का गुणगान इसी तरह से करते हैं। तो ऐसे लीलाओं से हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, हमें कैसे होना चाहिए, भगवान और उनके भक्तों के गुण क्या होते हैं, उनके संबंध क्या होते हैं। तो ऐसे संवाद, ऐसे कथाओं को सुनने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे हृदय में भी कृष्ण भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है। तो अब 3 बजे हैं, तो कथा यहीं समाप्त करते हैं। श्री रामानंद राय की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गोप प्रेमानंदे हरे कृष्णा।